हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आयु आरव के साथ उसके केबिन में थी। आयु की तबीयत आज भी सही नहीं थी और आरव उसे संभाल रहा था। इस बीच आरव का पूरा ध्यान था कि वो गलती से भी मंथन से किया वादा ना तोड़े। वो आयु को छूने से बच रहा था। उसके इस छोटे से जेस्चर से आयु काफी इम्प्रेस हुई और उसने महसूस किया आरव उतना भी बुरा नहीं है। आयु ने उसकी तारीफ की ही थी कि आरव बोल पड़ा, शुक्र मनाओ कि अभी मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ, वरना किसी की क्या मजाल कि वो इस मिस्टर खुराना की मिसेस खुराना को उससे अलग कर पाए। वेरी फनी आरव, प्लीज तुम मुझसे ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करना शुरू किया था, आयु ने नजरें नीची करके कहा। आरव की बातों से आयु थोड़ा असहज हो गई थी। आरव ने फिर से माहौल को हल्का करने की कोशिश की। आरव ने मुस्कुराते हुए हल्के लहजे में जवाब दिया, हाँ अब तो तुम कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो रही हो, तभी तो सिर्फ टी शर्ट पहनकर मेरे सामने आ गई, और वो भी मेरी ही टी शर्ट। शट अप आरव, मेरी ये टी शर्ट माहिरा की ड्रेस से तो लंबी थी, मजबूरी थी तब पहनी थी, वापस कर दूंगी, आयु उसे घूरते हुए बोली। तब तो मिसेस खुराना, मुझे अपनी टी शर्ट अभी इसी वक्त वापस चाहिए, आरव ने आईविंग करके कहा। वो उसे जानबूझकर परेशान कर रहा था। आयु ने सिर हिलाकर मना किया और कहा, नहीं मिलेगी। अचानक आयु को अपने आंखों के सामने सब घूमता हुआ सा नजर आने लगा। उसने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आरव मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ आंखों के सामने घूम रहा हो। आरव उसकी हालत देखकर परेशान हो गया था। वैसे भी उसे साक्षी ने यही कहा था, आयु का खास ख्याल रखना जरूरी है। आरव ने तुरंत आयु को कुर्सी पर बिठाया और चिंतित स्वर में पूछा, तुमने आज लंच किया था और अपनी मेडिसिन तो ले ली थी ना? नहीं आरव, मुझे आयु दबी आवाज में बोलने की कोशिश कर रही थी। आयु अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही वो कुर्सी पर बेहोश हो गई। आरव ने उसे बेहोश देखकर घबरा गया और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। आरव कुर्सी को घसीटते हुए आयु को बाहर ले गया। आरव को अचानक इस तरह देखकर आसपास का स्टाफ वहां इकट्ठा हो गया। माहिरा ने हैरानी से पूछा, बेबी क्या हुआ इस मॉडल को, ये बेहोश कैसे हो गई? आरव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट योर माउथ, मैं तुम्हारा कोई बेबी नहीं हूँ और ये मॉडल नहीं मेरी वाइफ है, और आप लोग यहाँ क्या तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए हैं, जाकर अपना अपना काम कीजिए वरना सबको निकाल दूंगा यहाँ से। आरव के गुस्से को देखकर वहां खड़ा स्टाफ तुरंत वहां से चला गया। सब अपने अपने काम में वापस जुट गए। आरव ने आयु को ऑफिस के कॉमन रूम में ले जाकर उस पर पानी के छींटे मारे। आरव ने चिंता भरे स्वर में कहा, मिसेस खुराना तुम ठीक तो है ना, प्लीज जल्दी से होश में आ जाओ। पानी के छींटे गिरने से उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। आयु ने सिर पकड़ते हुए धीरे से कहा, तुम क्या मुझे कुर्सी समेत ही यहाँ उठाकर ले आए हो? उसने देखा वो अभी भी उसी चेयर पर है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैंने मंथन को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, और वैसे भी मैं तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें छूना नहीं चाहता था। इतना भी अपने प्रॉमिसेस पर स्टक मत रहो, कभी कभी इमरजेंसी भी हो सकती है तो तुम मुझे टच कर सकते हो आरव, आयु ने कहा। सच में? आरव जल्दी से बोला। आरव ने तुरंत आयु को अपने सीने से लगा लिया था। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, थैंक यू सो मच मिसेस खुराना, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कब से हग करना चाहता था, तुम्हें ऐसे देखकर मैं घबरा गया था, अब जब तुमने परमिशन दे दी है तो एक हग तो बनता ही है, वैसे तुम इस टी शर्ट में बहुत अच्छी लग रही हो। आयु ने आरव के सीने पर हल्का सा मारा और उसे दूर होने की कोशिश करने लगी। उसे छोड़ने के बजाय उल्टा आरव ने उसे और भी कसकर जकड़ लिया था। कभी कभी आरव सच में अनप्रिडिक्टेबल हो जाता था, उसकी हरकतें काफी अजीब थीं। अरे छोड़ो मुझे, ठरकी खुराना, मैंने उंगली क्या पकड़ाई, तुम तो सीधे गले ही आ गए, आयु ने उसे घूरते हुए कहा। आरव के अचानक इस तरह करीब आने पर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। आरव ने हंसते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो तुमने खुद इजाजत दी है। छोड़ रहे हो या धक्का दूं? आयु चिढ़कर बोली। लो छोड़ दिया, इतना कहकर आरव आयु से एक झटके में अलग हो गया। उसके फेस पर ईविल स्माइल थी जो आयु को और चिढ़ा रही थी। आयु ने तुरंत कहा, हाँ तो आगे से ऐसे टच मत करना मुझे। नहीं, पहले तुमने मुझे हाँ बोला था, मैं तो अपना वादा निभा रहा था, आरव बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, आयु ने जवाब दिया, लेकिन अब मैं ना बोल रही हूँ ना, बात वाला मैं नहीं मानता, आरव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। वो खुश था क्योंकि आज उसका आयु को तंग करने का कोटा पूरा हो गया था, लेकिन आयु की बीमारी में वो उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। आरव ने आयु का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब पहले खाना खाओ, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। मेरी मेडिसिन मेरे पास नहीं है आरव, वो लुधियाना में रह गई थी, आयु ने बताया।
चलो फिर पहले हॉस्पिटल चलते हैं, वहां से तुम्हारा चेकअप करवा कर मेडिसिन ले लेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा, आरव ने जवाब दिया। आयु को भी उस वक्त बहुत भूख लगी थी और उसकी बॉडी को दवाइयों की भी सख्त जरूरत थी। वो काफी वीकनेस फील कर रही थी, पर साथ ही आयु के चेहरे पर हल्के झिझक के भाव थे। आयु ने हिचकिचाते हुए कहा, इन कपड़ों में मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ, मेरा मतलब सिर्फ टी शर्ट। आरव ने बीच में टोकते हुए कहा, अरे छोड़ो, आ जाओ चलते हैं। मैं तुम्हें सुबह से कितनी बार बोल चुका हूँ कि तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो, तुम हो कि मेरी बात मान ही नहीं रही हो। आरव जबरदस्ती आयु का हाथ पकड़कर उसे कार तक ले गया और फिर दोनों हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। वहीं मंथन के कुछ दिनों तक लुधियाना रुकने की खबर सुनकर ओबरॉय फैमिली बहुत खुश हुई, खासकर अनुष्का। दो ही दिनों में उसे मंथन से एक अलग अपनापन महसूस होने लगा था। अनुष्का अपने केबिन में बैठकर मंथन के बारे में सोच रही थी। अनुष्का ने मन ही मन सोचा, मैं नहीं जानती कि मेरी फीलिंग्स सही हैं या गलत, लेकिन फीलिंग्स तो फीलिंग्स होती है ना, ये कभी अच्छी या बुरी नहीं हो सकती। पता नहीं क्यों मुझे मंथन इतना अच्छा लगने लगा है, हालांकि मैं जानती हूँ कि मंथन और आयु एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं कभी उनके बीच में नहीं आ सकती, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे मंथन बहुत अच्छा लगता है, जबकि उसके दिल में मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर कभी कोई फीलिंग नहीं होगी। अनुष्का अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी मंथन ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज से अनुष्का का ध्यान तुरंत टूट गया था। उसके परेशान चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। अनुष्का ने उसकी तरफ देखकर कहा, कम ऑन मंथन, तुम अंदर आ सकते हो, तुम्हें दूर नॉक करने जैसी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मुझे लगा तुम बिजी होगी। जय अंकल तुम्हें, मेरा मतलब हमें मीटिंग रूम में बुला रहे हैं, अनु वे हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, मंथन ने बताया। अनुष्का ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ चलो चलते हैं। अनुष्का और मंथन मीटिंग रूम में पहुंचे, जहां रुद्र, सिमरन और जय जी पहले से मौजूद थे। माहौल काफी गंभीर था, मानो वहां कुछ बड़ा डिस्कस किया जाना था। उन दोनों को देखते ही जय जी ने कहा, अनु और मंथन आओ तुम दोनों, मैं चाहता था कि इस मीटिंग में आयु भी होती, लेकिन तुम लोग जानते हो कि वो कितनी जिद्दी है, गुस्से में यहाँ से चली गई और ऊपर से कॉल भी पिक नहीं कर रही। रुद्र ने सिर हिलाकर कहा, डैड आप अच्छे से जानते हैं कि अगर वो यहाँ होती तो भी ये मीटिंग कभी अटेंड नहीं करती, उसे ओबरॉय इंडस्ट्रीज के किसी भी डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होना है।
वही मंथन को थोड़ा अजीब लग रहा था, वो मीटिंग ओबरॉय इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी और देखा जाए तो मंथन उनके यहाँ काम नहीं करता था, वो पूरी तरह बाहर वाला था। फिर उसे समझ नहीं आया कि उसे इस मीटिंग में क्यों बुलाया गया है।
सॉरी अंकल, लेकिन आपकी कंपनी की मीटिंग में मेरा क्या काम, मेरा मतलब डिज़ायर्स और ओबरॉय इंडस्ट्रीज एक दूसरे की कंपीटिटर हैं, ऐसे में मेरा यहाँ होना सही नहीं है। उसकी ईमानदारी देखकर जय जी बहुत इम्प्रेस हुए, उन्होंने जवाब दिया, मंथन मैं तुम्हारी ईमानदारी की तारीफ करता हूँ, यही वजह है कि मैंने तुम्हें बुलाया। मुझे डिज़ायर्स के साथ डील से रिलेटेड बात करनी थी। आरव अपनी ड्रीम कलेक्शन ख्वाब को लॉन्चिंग से पहले किसी बड़ी इंडस्ट्री के साथ कोलैब करना चाहता था। डिज़ायर्स की तरफ से पहले भी ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ने के कई ऑफर आए थे, लेकिन जैसा तुम जानते हो ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ हमेशा एथनिक और ट्रेडिशनल ड्रेसेस को ही प्रायोरिटी देता है, जबकि डिज़ायर्स में ज़्यादातर वेस्टर्न अटायर्स बनते हैं। मंथन ने उनकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ इस बार आरव सर ने अपना पूरा कलेक्शन ट्रेडिशनल और एथनिक रखा था, ख्वाब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में पूरे 2 साल दिए थे, दिन रात एक करके हर चीज़ को ख्वाब की तरह तराशा था, मैंने खुद देखा था उन्हें इस पर काम करते हुए। आरव के साथ हमारे जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रोफेशनली आरव खुराना बहुत प्रोफेशनल है। मैं तो पहले भी डिज़ायर्स के साथ जुड़ना चाहता था, लेकिन डैड नहीं चाहते थे कि ओबरॉय इंडस्ट्रीज़ अपने वैल्यू से समझौता करे, रुद्र ने अपनी राय रखी। सिमरन भी उसकी बात से सहमत थी, आरव की हर डिज़ाइन शानदार है, मुझे नहीं लगता कि हमें ये डील अपने हाथ से जाने देनी चाहिए, वो बोली। हर कोई डिज़ायर्स के साथ डील को लेकर श्योर था, उन्हें आरव के साथ काम करने में कोई दिक्कत थी, एज अ बिजनेसमैन वो काफ़ी प्रोफेशनल था। इन सब में अनुष्का थोड़ी परेशान थी। अनुष्का ने चिंता जताते हुए कहा, तो क्या आयु को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, मेरा मतलब अगर हम आरव के साथ कोलैब करेंगे तो, आयु आरव को बिल्कुल पसंद नहीं करती। आयु कभी पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों को मिक्स नहीं करती, आरव के साथ इतना कुछ होने के बावजूद वो उसका फोटोशूट पूरी शिद्दत के साथ कर रही थी, मंथन ने तुरंत कहा, आखिर उससे बेहतर आयु को कौन समझ सकता था। जय जी ने भी सहमति जताई, मुझे भी यही लगता है कि आयु को कोई परेशानी नहीं होगी, इससे पहले कि कोई दूसरी कंपनी बीच में आए मैं चाहता हूँ कि ओबरॉय इंडस्ट्रीज इस डील के लिए पहल करे, बाकी तुम लोग भी अपनी राय रख सकते हो। रुद्र ने आरव की भेजी हुई फाइल एक बार फिर देखी और कहा, डिज़ाइंस तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ ड्रेसेस महंगे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये घाटे का सौदा होगा, हम अपनी यूएसए ब्रांच में इन ड्रेसेस को अपने मनचाहे दाम पर आसानी से बेच सकते हैं, वहाँ इनकी अच्छी डिमांड होगी, मुझे लगता है कि आरव भी यही चाहेगा कि डिज़ायर्स का नाम यूएसए में भी हो, सिमरन बोली।
एक बात को लेकर वो अभी भी हैरान थे। वेस्टर्न डिजाइन के मामले में डिजायर्स का अच्छा खासा नाम था, फिर भी आरफ ने अब तक अपनी डिजाइन को यूएस में लॉन्च नहीं किया था। उन्हें लगा यह आरफ के लिए अच्छा मौका हो सकता है। जय जी भी सिमरन को टोकते हुए कहा, नहीं सिमरन, शायद तुमने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें ठीक से नहीं पढ़ी। उसमें साफ लिखा था कि डिजायर्स की कोई भी ड्रेस यूएसए में नहीं बिकेगी। सिमरन ने हैरानी से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों डैडी जी? हर कंपनी यही चाहती है कि उसका नाम ना सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेश में भी हो। हाँ डैड, ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही, इसका क्या कारण हो सकता है? रुद्र भी चौंक गया था। तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन 25 साल पहले डिजायर्स की यूएसए में भी एक ब्रांच थी, जिसे आरफ के मॉम छवि खुराना देखती थी, और चंडीगढ़ की ब्रांच उसके डैड अनुराग खुराना। र्यूमर्स थे माँ छवि खुराना का किसी के साथ अफेयर हो गया था, और वही उन दोनों की मौत का कारण बना। केस को पूरी तरह एक्सीडेंट में बदल दिया गया था। आरफ को उस जगह से नफरत है। तभी जब आरफ बड़ा हुआ, उसने सबसे पहले यूएसए की ब्रांच बेच दी और उससे मिले मुनाफे को चंडीगढ़ की ब्रांच में लगाया। उसने खुराना इंडस्ट्रीज का नाम बदलकर डिजायर्स रखा। मुझे नहीं पता आरफ कैसा इंसान है, लेकिन उसकी मेहनत की वजह से आज चंडीगढ़ की टॉप 3 फैशन इंडस्ट्रीज में से एक है। आरफ की जिंदगी की कहानी इस तरह की रही होगी, इस बारे में तो मंथन को भी अंदाजा नहीं था। एक पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। सबको यही लगता था कि आरफ के मॉम डैड की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, जबकि इसका सच पूरी तरह अलग था, जो कि शायद जय जी भी नहीं जानते थे।